नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से इतर कई शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, समिट ने कई मायनों में बड़ी सफलता हासिल की। अवसंरचना में 250 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान सीमा सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने असम में जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के SIR में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों की तैनाती का निर्देश दिया। और ICC T20 विश्व कप में ओमान ने ऑस्ट्रेलिया को 105 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट के इतर स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम, लिक्टेनस्टीन के राजकुमार एलोइस और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के साथ व्यापार तथा निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, संस्कृति और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ ऊर्जा, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, संस्कृति, समुद्री अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने उन्नत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने AI को सर्वव्यापी बनाने और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की रचनात्मक भूमिका पर भी चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि AI इम्पैक्ट समिट कई मायनों में सफल रहा है। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने यह बात कही।
यह AI इम्पैक्ट समिट कई मायनों में एक बड़ी सफलता साबित हुआ है। इसमें 5 लाख से अधिक दर्शक शामिल हुए हैं। उन्होंने बहुत कुछ सीखा और दुनिया भर से आए अनेक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख AI कंपनियां इसमें शामिल हुई। साथ ही कई स्टार्टअप्स के नवाचारों को प्रदर्शित करने का शानदार अवसर मिला।
श्री वैष्णव ने बताया कि निवेशकों ने बुनियादी ढांचे में 250 अरब डॉलर और वेंचर कैपिटल डीप टेक में 20 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सभी प्रमुख देशों ने समिट घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि 70 से अधिक देशों ने पहले ही घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये संख्या 80 से अधिक होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस आयोजन को बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में विश्व के शीर्ष 20 नेता शामिल हुए और मंत्री स्तरीय स्तर पर दुनिया भर से 45 शिष्टमंडलों ने भाग लिया। सम्मेलन में 100 देशों का प्रतिनिधित्व था। समिट के 5वें दिन के कार्यक्रमों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
भारत AI इम्पैक्ट समिट के 5वें दिन दुनिया भर के तकनीकी अधिकारी, नीति निर्माता और उद्योग जगत के नेताओं ने भारत की बढ़ती AI क्षमताओं को विभिन्न चर्चाओं में रेखांकित किया। आज भारत औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो गया, जब भारत और अमरीका के बीच रणनीतिक, तकनीक और सप्लाई चेन सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कल भारत AI इम्पैक्ट एक्सपो का आखिरी दिन है। प्रदर्शकों, नवाचारकर्ताओं और आगंतुकों की भारी रुचि को देखते हुए सरकार ने एक्सपो को एक और दिन बढ़ा दिया था। इससे विद्यार्थी, पेशेवरों और आम लोगों को प्रदर्शकों से मिलने और AI के व्यवहारिक उपयोग, डेटा सुरक्षा मानकों, नियमों के पालन और इसके वास्तविक प्रभाव को समझने का अधिक अवसर मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कल सम्मेलन के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें पंजीकृत प्रतिनिधियों के लिए संशोधित प्रवेश व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा दी गई है। परामर्श के अनुसार कैब से आने वाले प्रतिनिधियों को गेट नंबर 4 से और मेट्रो से आने वाले प्रतिनिधियों को गेट नंबर 10 से सुबह 9:15 से प्रवेश की अनुमति होगी। प्रदर्शकों के लिए गेट सुबह 8 खुलेंगे। मीडिया सेंटर कल चालू नहीं रहेगा। कार्यक्रम स्थल के भीतर आवागमन के लिए विशेष गोल्फ कार्ट उपलब्ध रहेंगे और परिसर के बाहर जाने के लिए गेट नंबर 4 से 10 के बीच शटल सेवा संचालित होगी। भारतीय जनता पार्टी ने एआई समिट के दौरान कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के विचार के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि इस मामले में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत बनाम उन शक्तियों के खिलाफ है जो भारत की छवि को जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंतर्गत धूमिल करना चाहते हैं।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी से कांग्रेस की दूरदृष्टि की कमी उजागर होती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में कछार जिले के भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र में नतनपुर में जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम देश के 17 राज्यों के 334 प्रखंडों और 1954 गांवों के साथ असम के 140 सीमावर्ती गांवों में आयोजित किए जाएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा से लगे 334 प्रखंडों और लगभग 2000 गांवों में भी विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। गृहमंत्री ने असम में अवैध अतिक्रमण को सबसे बड़ी समस्या बताया।
असम में घुसपैठिए असमियों के अधिकारों को छीन रहे थे कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा। असम की जनता ने 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की शुरुआत की और हमने सबसे पहले 5 साल घुसपैठ को रोकने का काम किया।
इसके बाद गृहमंत्री ने अगरतला में पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा में हिन्दी, बंगाली और कोक बरोक भाषाएं धारा प्रवाह बोली जाती हैं और राज्य में भाषा को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदी आंदोलन की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में रखी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वराज का अर्थ स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अमरीका हाल ही में अनुमोदित संयुक्त बयान के अनुसार परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जारी संयुक्त बयान को हमने अपनाया है। संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारी ओर से मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में एक टीम के अगले सप्ताह अमेरिका जाने की संभावना है।
श्री जायसवाल ने कहा कि वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक होने पर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार करेगा। पीस ऑफ बोर्ड के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में शामिल हुआ था। भारत ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा शांति योजना तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2803 के अंतर्गत जारी प्रयासों का भी स्वागत किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 25 वर्षों में देश को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए रखने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नई दिल्ली में निर्यात संवर्धन मिशन के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्री गोयल ने कहा कि फरवरी के मध्य तक वस्तु निर्यात दहाई के आंकड़े में पहुंच गया। ये मजबूत वैश्विक मांग और उद्योग के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
The benefits of global...
वैश्विक व्यापार का हर लाभ प्रत्येक MSME, उद्यमी और स्टार्टअप तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमारा प्रयास है कि भारत के नए उत्पाद दुनिया के विभिन्न देशों और महाद्वीपों तक पहुंचें। हमारा उद्देश्य नए बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है। हम नए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि इनकी व्यापार को बढ़ावा मिल सके।
टू प्रमोट न्यू एज बिजनेसेस
सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए गोवा, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत 137 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि विभिन्न वित्तीय वर्षों से संबंधित आवंटनों को शामिल करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय सुशासन को और अधिक मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों के तैनाती का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने राज्य में SIR प्रक्रिया पूरा करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराने और पूर्व न्यायाधीशों की तलाश करने का अनुरोध किया। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा संशोधन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त ए श्रेणी के अधिकारियों को उपलब्ध न कराने पर गंभीर संज्ञान लिया। न्यायालय ने आयोग 28 फरवरी तक राज्य में मतदाताओं की मसौदा सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल पुलिस पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुई हिंसा से संबंधित केस डायरी सौंपने से इंकार करने का आरोप लगाया है। कल राज्य पुलिस को मामले संबंधी सभी दस्तावेज तुरंत केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया गया था। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में 6,450 करोड़ रुपए का तीसरा पूरक बजट प्रस्तुत किया। बजट में विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास परियोजनाओं और लंबित कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने इसे राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे चालू परियोजनाओं के अमल में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखक मणिशंकर मुखोपाध्याय के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि मुखोपाध्याय बंगाली साहित्य के एक महान व्यक्तित्व थे और उन्होंने पाठकों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया और अपनी अविस्मरणीय रचनाओं के माध्यम से साहित्यिक जगत को समृद्ध किया है। सरकार ने इस वर्ष 1 अप्रैल से पूरे देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से डिजिटल टोल प्रणाली बनाना और परिचालन दक्षता को मजबूत करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि सभी टोल भुगतान केवल फास्टैग और एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 से 2025 के बीच 7,85,00,000 से अधिक पर्यटक आए, जबकि 2016 से 2018 के दौरान ये संख्या 4,76,00,000 थी। भारत और फिनलैंड ने आज संयुक्त समन्वय समूह के अंतर्गत रक्षा उत्पादन संबंधों को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में फिनलैंड के विदेश मंत्रालय के विशेष दूत एंटी वासारा से मुलाकात की। पल्ले केले में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में ओमान ने ऑस्ट्रेलिया को 105 रन का लक्ष्य दिया है। ओमान की टीम 17वें ओवर में 104 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 30 रन बना लिए हैं। दोनों टीमें पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी हैं। कल से सुपर 8 के मुकाबले शुरू होंगे। पहले मैच में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। वहीं भारत रविवार को अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास संघीय आपातकालीन शक्तियों के कानूनों के अंतर्गत लगभग हर देश पर एकतरफा व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। इस फैसले को राष्ट्रपति के प्रमुख आर्थिक नीति पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, माहे और काराईकल में भारी बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कल ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, गुजरात और महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में 204 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कई शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा समिट ने कई मायनों में बड़ी सफलता हासिल की। अवसंरचना में $250 अरब से अधिक के निवेश की घोषणा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान सीमा सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के SIR में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों की तैनाती का निर्देश दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को गैर कानूनी बताया और ICC T20 विश्व कप में ओमान ने ऑस्ट्रेलिया को 105 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।